कैंडिडेट का उम्मीदवार का भी भाव होगा। ऐसी दुनिया में आप कहां तक कल्याणकारी कार्य करेंगे, बाजार उसको गट कर जाएगा। बाजार ऐसी संस्था है कि जिसका पेट बकासुर का, उसमें सारे मूल्य समा जाते हैं। अगर भगवान भी बिकता है तो सारे मूल्य बिकते हैं, इसमें कौन सा आश्चर्य है। इस मार्केट ओरिएंटेशन में से निकालना होगा। गांधी के सामने एक चीज थी कि बाजार नहीं रहेगा। शुरू यहां से किया कि कम वस्त्र बाजार में नहीं रहेगा। बाजार विनोबाबाद में आया, उसने कहा वस्त्र के साथ अन्न को भी जोड़ो, अन्न को और वस्त्र को बाजार से उठा लो तो 50% मनुष्य बाजार से उबर जाएगा, बाजार से उसका उद्धार हो जाएगा। तो ये जो हमारा अर्थशास्त्र है, मैं नहीं जानता शास्त्र है कि नहीं, लेकिन ये जानना किस तरफ है इसको, बाजार नहीं रहेगा। एक बात मैंने हजार बार कही है, एक वाक्य उसको दोहरा देता हूं। दुनिया में दुकान नहीं रहेगी, मकान ही मकान रहेंगे। खादी की भी दुकान नहीं, अन्न की भी दुकान नहीं। इस दिशा में हमको जाना है, और गांधी को ही नहीं जाना है, मार्क्स को भी जाना है, माओ को भी जाना है, लेनिन को भी जाना है, स्टालिन को भी जाना है, डांगे और नमूद्रीवाद को भी जाना है। दिशा ये एक ही है कि समाज में बाजार नहीं रहेगा, बाजार के लिए उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन मनुष्य के लिए होगा। और जब मनुष्य के लिए उत्पादन होगा तो जूता बनाने वाला भी जूता पहन सकेगा। आज जूता बनाने वाला नंगे पैर चलता है और हमको जूता पहनाता है। 300-300 रुपए के सूट सीने वाला दर्जी आपको सूट पहनाता है, खुद नहीं पहन सकता। उत्पादक की प्रतिष्ठा नहीं है। तो सोशलिस्टों का एक नारा है, द सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर शैल बी सोसाइटी ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड नॉट द सोसाइटी ऑफ प्रोप्राइटर्स एंड कंज्यूमर्स। आगे आने वाला समाज उत्पादकों का समाज होगा। उत्पादकों का समाज होना चाहिए, उनकी इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा, उनका रुतबा बढ़ना चाहिए। इस दिशा में हमको जाना है मित्रों, और इसका प्रतीक हमने खादी को माना है। आज मनुष्य का फंक्शन नहीं रह गया है, मनुष्य के लिए काम नहीं रह गया। जहां पर संपन्नता है वहां मनुष्य के लिए काम नहीं है, और जहां पर विपन्नता है, गरीबी है, वहां मनुष्य को काम नहीं है। जहां मनुष्य को काम नहीं है वहां बेकारी है, जहां मनुष्य के लिए काम नहीं है वहां फुर्सत ही फुर्सत है। यूरोप में बीमारी फुर्सत की है, हमारे यहां बीमारी बेकारी की। इसलिए काम को आराम के साथ जोड़ना है, काम को आराम के साथ जोड़ने में एक ही बात आएगी कि काम में, उत्पादन में जीव शक्ति का उपयोग होना चाहिए, तब जीवन संपन्न होगा। जीवन में जितना जीवन का प्रयोग होता है, जीवन जितना उपयोगी होता है, उतना ही जीवन संपन्न होता है। केरल के मुख्यमंत्री ने और बंगाल के मुख्यमंत्री ने मुझे पत्र लिखा है कि बेकार पशुओं को विनोबा जिलाना चाहते हैं और उनके लिए उपवास कर रहे हैं। तो बेकार मनुष्यों को जिलाना चाहते हैं और उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये चीज जल्दी आ सकती है। जीवन का उपयोग उत्पादन और वितरण में होना चाहिए। जीव का उपयोग, जीव शक्ति, मनुष्य को केंद्र में रखो, कहा सोम भाई ने, जीव को केंद्र में रखो। सबसे पहले मनुष्य का उपयोग होना चाहिए, उत्पादन में मनुष्य का उपयोग होना चाहिए और उसमें से उसके व्यक्तित्व का, उसकी विभूति का विकास होना चाहिए। उसके बाद पशु का भी उपयोग होना चाहिए। हम पीछे की तरफ जा रहे हैं मित्रों, एक एक पशु हमारे जीवन में से जा रहा है, तिरोहित हो रहा है। हाथी गया, ऊंट जा रहा है, घोड़ा गया, बैल भी जा रहा है और गाय इसलिए है कि दूसरा कोई प्राणी दूध नहीं दे रहा है। यंत्र से अगर दूध हो जाता तो गाय भी चली जाती। जीव केंद्रित अर्थव्यवस्था का गाय प्रतीक है, यंत्रवाद के विरोध का गाय प्रतीक है, प्रदूषण के विरोध का गाय प्रतीक है और पृथ्वी के सृष्टि के शोषण के विरोध का भी गाय प्रतीक है। ये कोयला समाप्त हो रहा है, लोहा समाप्त हो रहा है, कैपिटल रिसोर्सेस, वसुंधरा में जो वसु है, जो द्रव्य है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इसके खिलाफ भी गाय हमारा प्रतीक है कि जीव केंद्रित अर्थव्यवस्था होगी। संयोजन जीव केंद्रित होगा, जीवन केंद्रित होगा, उसमें से जीवन का विकास होगा। सबसे पहले मनुष्य का, उसके बाद पशु का, वनस्पति का और सृष्टि का। सृष्टि का भी शोषण नहीं होगा। यह हमारा नारा विकेंद्रीकरण नहीं है मित्रों, विकेंद्रित शोषण भी हो सकता है। केंद्रित शोषण, विकेंद्रित शोषण, शोषण शोषण ही है। जहर की बड़ी पुड़िया और छोटी पुड़िया जहर ही है। इसलिए विनोबा ने कहा था कि हमारा ग्राम स्वराज्य होगा लेकिन कैसा होगा, विश्व राज्य की तरह, सारी दुनिया का राज्य और गांव का राज्य दोनों अलग अलग तरह के नहीं होंगे, छोटा लड्डू और बड़ा लड्डू लेकिन दोनों गोल, लड्डू का टुकड़ा नहीं। नहीं तो मित्रों हम लोकलिज्म में डूब जाएंगे, क्षुद्र क्षेत्रवाद आ जाएगा और हमारे गांव से बाहर हमारी नजर नहीं जाएगी, हमारे लिए विश्व नहीं रहेगा। बचपन में भूगोल हमको सिखाते थे तो साइबेरिया में 3 नदियां हैं, ओबी यानी सी लीना, हम भोगते रटते थे ओबी यानी सी लीना, ओबी यानी सी लीना। एक दिन मेरी माँ ने पूछा कि जिस जिले में तू रहता है उस जिले में कौन कौन सी नदियां हैं। मैं कहा मुझे मालूम नहीं है, कि दुनिया भर की नदियां जानता है और अपने गांव के पास की नदियां तो जानता नहीं है। तो उस वक्त मुझे लगा कि माँ की बात बात सही है, लेकिन आज मुझे लगता है कि माँ की बात बात गलत थी। उस वक्त अगर वो भी यानी सी लीला मैं नहीं सीखता तो आज भी मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं मालूम होती। गांव के नजदीक की नदी वहां तो मैंने जाकर देख ली पहले, क्योंकि वहां मुझे जीना था। इसलिए स्वराज्य गांव का हो लेकिन दर्शन विश्व का, दिमाग विश्वव्यापी होना चाहिए। स्वराज्य चाहे गांव का हो, नहीं तो हर गांव मित्रों एक अलग अलग छोटा छोटा राज्य बन जाएगा और छोटा छोटा विश्व बन जाएगा। नतीजा ये होगा कि गांव के आकार के ही मनुष्य पैदा होंगे दिल और दिमाग से, वो दुनिया के आकार के नहीं होंगे। छोटे छोटे बौने बौने आदमी तैयार होंगे, विश्व के नाप का मनुष्य नहीं होगा। और अब तो विश्व नजदीक आ रहा है, अब तो कुत्ता भी विमान में बैठ सकता है, तो गांव वाला अब रेल में बैठ सकता है, मोटर में बैठने लगा, किसी दिन विमान में भी बैठने लगेगा। लेकिन दिमाग वही गांव का ही रह जाएगा, यह नहीं होना चाहिए। आपकी आश्रमशालाओं में आप विश्व का भूगोल सिखाइए, इस गोल पृथ्वी को उसके उसकी नजर के सामने आने दीजिए। वी डोंट वांट कलेक्टिव ओनरशिप, वी वांट टू डिस्पेंस विथ ओनरशिप, टू अबॉलिश ओनरशिप। हम ग्राम स्वामित्व नहीं चाहते हैं मित्रों, राज्य स्वामित्व नहीं तो समाज स्वामित्व ही भी नहीं, स्वामित्व ही नहीं चाहते। मेहनत इंसान की, दौलत भगवान, यानी किसी की नहीं सबकी। मागृध कस्यस्विद धनम, गुजराती में अनुवाद हुआ है, मैं सुनता हूं प्रार्थना में, तो अन्य की, अन्य के धन की कामना मत कर, ऐसा कुछ उसका हुआ है। तो मैंने कहा कि दूसरे के धन की नहीं करेगा, अपने धन की करेगा, तो एक ही बात होगी। बिरला कहां दूसरे का धन चाहता है, टाटा भी नहीं चाहता है, ये सब अपना ही धन चाहते हैं। शंकराचार्य के दिमाग में ये बात आई तो उन्होंने कहा, उसमें कहा है ना, कस्यस्विद, किसी के धन की कामना मत कर। तो किसी के से मतलब है अपना भी नहीं। तो वहां शंकराचार्य ने कहा है स्वस्य परस्य वा, अपना भी नहीं और दूसरे का भी नहीं। तो विनोबा ने, मैंने कहा कि ऐसा है, तो उन्होंने अपना सुधार लिया, किसी के भी धन की वासना मत रख। तो मैं आपसे जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि गांव अपने में राजा हो जाएगा तो क्या होगा। आपके गांव में ज्यादा अन्न है, दूसरे गांव में भूख है, तो आप महंगा बेचेंगे उसको, क्योंकि उसकी डिफिकल्टी है, उसकी मुसीबत है, जो आज सारे प्रांत कर रहे हैं इस देश के, अब ट्राय लगा दिया है। एक गांव दूसरे गांव से कहेगा कि हम अपना चावल तुमको देंगे, लेकिन जो भाव हमको लेना होगा उस भाव से, यह नहीं होना चाहिए। चित्र तो यह होना चाहिए ना कि मेरे यहां चावल है, तेरे यहां भूख है, तो जहां भूख है वहां चावल जाना चाहिए। यह ग्राम राज्य है और यह गांधी का ग्राम राज्य यही है, ऐसा मैं समझता हूं। अगर नहीं है तो फिर गांधी के भी ग्राम राज्य को छोड़ दीजिए, मनुष्य के ही ग्राम राज्य को लीजिए। ये मानव केंद्रित व्यवस्था है, ये जीव केंद्रित व्यवस्था है, जिस दिशा में हमको कदम बढ़ाना है, हमारे सारे काम, राहत के काम, कल्याणकारी काम इस दिशा में होंगे। भूदान के वक्त एक जमींदार हम लोगों के साथ था, तो मैं भाषण करता था। भाषण में मैंने कहा कि अब जमीन पर कोई नौकर भी नहीं रहेगा और कोई मालिक भी नहीं रहेगा। विरोबा कहते हैं कि दे जमीन कोई नहीं रहेगा, ये पहला नारा है। दूसरा नारा, जमीन का मालिक कोई नहीं रहेगा। तो रोता हुआ विरोबा के पास गया कि ये दादा ऐसी बात कहता है, आपको कौन जमीन देगा। तो विनोबा ने समझाया उसको कि ऐसा करो, आंख दादा की रखो और पैर तुम्हारे रखो, देखो क्षितिज तक, चलो अपने पैर से। तो जहां जाना है उस तरफ को नजर रहनी चाहिए, जाएंगे उस दिशा में तब ये रोटरी का कल्याणकारी काम, ये लायंस का कल्याणकारी काम, ये रिलीफ सोसाइटी, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन का कल्याणकारी काम और आपका कल्याणकारी काम, इन दोनों में डिफरेंस ऑफ काइंड, इनमें गुणात्मक अंतर रहेगा। उस गुणात्मक अंतर की आज आवश्यकता है। मित्रों, ये कुछ तीन चार बातें आप लोगों के चरणों में मुझे निवेदन करनी थी आपके विचार के लिए। ये कोई मार्गदर्शन नहीं है, मेरा वो अधिकार भी नहीं, दावा भी नहीं। ये कुछ बातें हैं जो मुझे साफ दिखाई देती हैं, और इसलिए दिखाई देती हैं कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं। किनारे खड़े होने आज जो खड़ा रहता है उसको दिखाई देता है। क्रिकेट देखने वाले ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड होते हैं और दूर से देखते हैं, तो आपके सारे कामों को दूर से देखता हूं। उनके विषय में जो मुझे निवेदन करना था वो आप लोगों के सामने निवेदन कर दिया है। मुझे आशा है कि आप अपना काम करने में इसका भी विचार रखेंगे, इसका भी ध्यान रखेंगे। दृष्टि कौन सी हो उस दृष्टि से काम हमको करना है। इतना ही आप लोगों के चरणों में निवेदन था। आप सबको बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। अपने देश के लिए ये चरखा वरदान है। इसमें दो संदेश हैं, ये दो विचारों की निशानी है। एक तो अपनी कमाई, अपने पसीने की कमाई की ये निशानी है, और दूसरी रोटी की निशानी है। इस देश में लोग भूखे भी हैं और बेकार भी हैं। भूखे को अन्न मिलना चाहिए लेकिन काम भी मिलना चाहिए। इसलिए हमारे देश में किसी ऐसे साधन की जरूरत थी जो साधन सबके लिए सुलभ हो, सबको मिल सके, और उस साधन को बरतने के लिए अपनी जगह से दूर न जाना पड़े। इस तरह का साधन गांधी जी ने हमको उपलब्ध करा दिया, मिला, प्राप्त करा दिया। वो ये चरखा है। अब इसके रूप बदलते रहेंगे जैसी जैसी जरूरत होगी, जैसा जैसा जमाना होगा, उस तरह से चरखे की शक्ल, उसका रूप बदलता रहेगा। ये जो अंबर का यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन प्रेरणा के लिए है। केवल प्रदर्शन नहीं है, ये केवल विज्ञापन जाहिरात नहीं है, ये प्रेरणा के लिए है और लोग भी इसको देखें। और इसमें दूसरा एक संकेत है कि आज तक जो लोग जंगलों में ही रहते थे और किसी प्रकार का काम इस तरह का नहीं कर सकते थे जो बस्ती में रहकर किया जा सके, ऐसा काम उन लोगों को इस चरखे की मार्फत मिल रहा है। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की बिरादरी बढ़ती चली जाए और इसका प्रचार इस देश में दिन दूना और रात चौगना होता चला जाए। हम सबको परमात्मा ये बुद्धि दे, ये शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और यही आप मेरा आशीर्वाद समझ लीजिए। धन्यवाद। वो तो एजिटेशन हुआ, उसमें से जो नतीजा आया वो रिवोल्यूशन नहीं आया। हमारे देश में मेले की प्रथा बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है मैं नहीं जानता। उन मेलों में कोई आयोजन नहीं होता है और कहा यह जाता है कि उन मेलों में भारतवर्ष का दर्शन होता है। मैं भी ऐसे मेलों में गया हूं लेकिन मुझे वहां भारतवर्ष का दर्शन नहीं हुआ। उन मेलों में जो दर्शन होता है वो किसी एक संप्रदाय के लोगों के दर्शन होते हैं, जिस संप्रदाय का मेला हो। कुंभ मेला हो तो हिंदू संप्रदाय के लोगों के दर्शन होते हैं, कहीं जैन लोगों के दर्शन होते हैं, कहीं उर्स हो तो मुसलमानों के दर्शन होते हैं, लेकिन भारत के दर्शन होते हों ऐसे मेले अभी अभी शुरू हुए हैं। और कल जैसा मैंने कहा कि उस तरह के मेलों में ये जो मेला है ये अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसलिए मैं ये मेले जहां होते हैं आधुनिक गांधी के बाद के, उन स्थानों को पुण्य क्षेत्र मानता हूं, क्योंकि ये मेले सांप्रदायिक नहीं है, ये मेले मानवीय हैं। सभी संप्रदायों के, सभी जातियों के, सभी क्षेत्रों के लोग इनमें शामिल हो सकते हैं। गुजरात का मेला है, फिर भी गुजरात के किसी एक संप्रदाय का या एक जाति का या एक वर्ग का नहीं है। मैंने ये कहा कई बार कि सामुदायिक प्रार्थनाएं पहले भी होती थी लेकिन गांधी की सामुदायिक प्रार्थना में और पहले की सामुदायिक प्रार्थनाओं में बहुत बड़ा अंतर है। मुसलमानों की सांप्रदायिक प्रार्थना होती है जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं, हिंदुओं की होती है, ईसाइयों की होती है, लेकिन इनमें से किसी सांप्रदायिक प्रार्थना में ईश्वर अल्लाह तेरे नाम नहीं था। भजन थे लेकिन भजन भी लोग जब गाते थे तो अल्लाह वाले अल्लाह को ही मानते थे और ईश्वर वाले अपने इष्ट देव को मानते थे। ईश्वर और अल्लाह की मिली जुली प्रार्थना हो, ये गांधी के हम लोगों के लिए देन है। गांधी का राष्ट्रीय जीवन में ये योगदान है। हमारे राष्ट्रीय जीवन में शुरू तो राष्ट्रीयता का आरंभ तो हिंदुओं से हुआ, स्वाभाविक भी था। शुरू में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के सामने हम ठहर नहीं सके मित्रों। बहुत पुराना देश कहलाता है, संस्कृति भी बहुत पुरानी कहलाती है, लेकिन जैसा कल मैंने आप लोगों से कहा कि हमारे देश में अभाव था, अभाव और दुर्भिक्ष, चीजों की कमी और चीजों का अभाव। ये त्यागी देश नहीं था, वैराग्यशील देश नहीं था। आज भी जब हम अपने पुराने जमाने की तारीफ करते हैं तो क्या कहते हैं, यहां दूध की और शहद की नदियां बहती थी और सोने का धुआं निकलता था। कोई ये नहीं कहता कि इस देश में लोग गांव में रहते ही नहीं थे या सबके सब नदी के किनारे झोपड़ियों में रहते थे। ये वर्णन नहीं है। वर्णन यह है कि राम राज्य में अयोध्या की सड़कों पर चंदनों का और इत्र का छिड़काव होता था। यह आकांक्षा, ये अरमान हमारे देश के लोगों में रहा। ऐसे देश में अंग्रेज आधुनिकता और संपन्नता लेकर आया। उसके जीवन में आधुनिकता थी जो विज्ञान के कारण आई थी और संपन्नता थी। विज्ञान के कारण एक संपन्नता भी आई, उसका आकर्षण हुआ। जैसे हमारे देश के आज के लोगों को शहरों का आकर्षण है, इस तरह से अंग्रेजों के जीवन का आकर्षण हुआ और यहां के लोग अभिभूत हो गए। उस वैभव को देखकर इनकी आंखें चौंधिया गई, उस प्रकाश से मानो आंख बंद सी होने लगी, उसके सामने दृष्टि ठहर नहीं सकी। ये क्यों हुआ, इसके दो कारण हैं। एक कारण, जो मेहनत जिसको करनी पड़ती है उसको मेहनत प्रिय नहीं है। अगर भगवान प्रसन्न हो जाए किसी वक्त धोखे से और आकर इस देश के किसान से और मजदूर से कहें कि मैं प्रसन्न हूं, क्या वरदान मांगता है, तो यह वरदान मांगेगा कि बगैर मेहनत के मुझे भोजन मिल जाए। ये मेहनत न करनी पड़े, धूप में खटना न पड़े, ठंड में रहना न पड़े, ये वरदान वो मांगेगा। वो प्रसिद्ध है कहानी, एक बूढ़ा था, 80 साल का, अंधा था। भगवान प्रसन्न हो गए तो पूछा, अरे वरदान एक ही मांग। तो उसने वरदान मांगा कि मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में भोजन करता हुआ देखूं। तो एक ही वरदान में उसने सब कुछ मांग लिया। बेटा भी मांग लिया, पोता भी मांग लिया, सोने की थाली भी मांग ली और रहने का घर भी मांग लिया। ये मनोवृत्ति है जिसको हमने समझा नहीं है। गांधी ने हमसे कहा कि श्रम को व्रत मानो। वो इसलिए कहा कि जो श्रमिक है वो श्रम से छुटकारा चाहता है। वो क्या चाहता है? वो यह चाहता है कि कोई ऐसी चीज मेरे पास आ जाए जिससे मैं श्रम न करूं, मेहनत न करूं और उपभोग कर सकूं। दो कहानियां आप लोगों ने भी सुनी होंगी, बचपन में मैं भी पढ़ता था। एक तो एक राजा, वो राजा था, उसने वरदान मांगा भगवान से, प्रसन्न हो गए कि जिस चीज को मैं छू वो सोने की बन जाए। इस लाउड स्पीकर का कुछ मेरे साथ नजदीक का रिश्ता मालूम होता है। मैं आपसे कह रहा था कि मेरी जबान बंद हो रही है तो उसने मेरा समर्थन किया। दिलोत्राम भाई का कृतज्ञ मैं दो कारणों से हूं। एक कारण तो यह है कि इस भव्य स्वरूप के दर्शन मिले हुए, इस प्रकार का गांधी मेला मैंने भारत में और कहीं नहीं देखा है। तो उनकी तपस्या और उनके पराक्रम का यह भव्य स्वरूप देखने का सद्भाग्य मुझे हुआ, ये एक कारण है। और दूसरा कारण यह है कि ऐसे अवसरों पर मुझे यह अनुभव होता है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां मेरी अक्ल काम नहीं करती और मुझे नहीं बोलना चाहिए। उनमें से ये एक स्थान है। फिर भी मैं हिम्मत इसलिए कर रहा हूं और इसके लिए व्यवस्थापकों को धन्यवाद देता हूं। वो साधारण जो मुख्य मुख्य लोग होते हैं उनको डायस पर बैठा देते हैं जहां पर बहुत भाषण सुनाई नहीं देते, क्योंकि वो लाउड स्पीकर के पीछे सब होते हैं बैठने वाले। इसलिए यहां जो भाषण हुए उनमें से बहुत से मैं समझ नहीं सका, इसलिए अपनी बात कहने की हिम्मत कर रहा हूं। मित्रों, कार्य का व्याकरण मैं नहीं सीखा, इसलिए उसके विषय में मैं आप लोगों के सामने कुछ निवेदन नहीं कर सकूंगा। कांति भाई ने कहा कि यह रचनात्मक कार्य नहीं है, यह राहत का काम है, परंतु इस देश में राहत और कल्याणकारी कार्य भी रचनात्मक कार्य ही है। इसलिए है कि यहां हद दर्जे की गरीबी है। इतनी गरीबी संसार के और किसी देश में होगी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन गरीबी ही नहीं बेकारी भी है, और बेकारी भी हद दर्जे की है। ऐसा अभागा देश है कि इस देश में जिसको काम मिला वो भी प्रिविलेज्ड हो जाता है, वो उसको भी समाज में एक विशिष्ट स्थान होता है उसका। जो बेकार नहीं है वो भी हमारे देश में विशिष्ट है, प्रिविलेज क्लास है। इस तरह की गरीबी और इस तरह की बेकारी इस देश में है, इसलिए कल्याणकारी कार्य भी हमारे देश में आवश्यक हो जाता है। इस कल्याणकारी कार्य का भार सरकार पर होना चाहिए, मैं भी मानता हूं, लेकिन दूसरी चीज भी मेरे चित्त में हमेशा आती है और वो यह है कि देश में जितना लोक कल्याण का कार्य होगा वो सरकार निर्भर कम से कम हो। प्राइवेट एजेंसी, गैर सरकारी संस्थाएं ये काम करें, इससे लाभ यह होगा कि नागरिकों में परस्पर विश्वास का विकास होगा, जिसका आज आत्यंतिक अभाव है हमारे देश में। मित्रों, सरकार का लोगों का जितना विश्वास है उतना किसी भी गैर सरकारी संस्था पर नहीं। ये परिस्थिति अत्यंत शोचनीय है। आपने गांधी संस्थाओं का नाम लिया, सर्वोदय की संस्थाएं हैं, सर्व सेवा संघ वगैरह संस्थाएं हैं, इनमें से कोई संस्था ऐसी नहीं है जिस संस्था पर लोगों का विश्वास सरकार की अपेक्षा अधिक हो। और हमारी शिकायत यह रही है ये इलेक्ट्रिसिटी आती है जाती है, ग्रेजुएट भी नहीं है आपका, डबल ग्रेजुएट उससे बेवकूफ है ज्यादा। तो मैं आपसे निवेदन यह कर रहा था कि इस देश में कोई गैर सरकारी संस्था ऐसी नहीं है, और मैं आप लोगों से यह भी नम्रता पूर्वक कह देना चाहता हूं कि जुगत राम भाई पर लोगों का जितना विश्वास है उससे सरकार के ऊपर अधिक है। इसलिए इस देश में गैर सरकारी संस्थाएं जितना काम करेंगी उतना जनसंपर्क बढ़ेगा। इस लोक संपर्क की आवश्यकता है, और लोगों में यह विश्वास पैदा होगा कि हमारी मुसीबतों का विचार करने वाले और उन मुसीबतों में हमारा साथ देने वाले कुछ लोग हैं। इसलिए मैं कल्याणकारी कार्य को भी आवश्यक मानता हूं। और सोम भाई रति भाई दोनों को का अभिनंदन इसलिए करता हूं कि वो लोगों को काम देने की चेष्टा कोशिश कर रहे हैं। इस कल्याणकारी कार्य को अगर मैं गलत समझता तो खादी नहीं पहनता। गांधी का नाम बहुत लिया गया है लेकिन अब वो गांधी और वो खादी दोनों नहीं रही, ये सब बंद हो जाता है।
चलिए
तो मैं ये निवेदन करने की दृढ़ता करता हूं कि हम गांधी का विचार छोड़ दें, गरीबी का विचार ही करें। गरीबी और बेकारी कारण भी बता दूं, कारण यह है कि गांधी का दिल और गांधी का दिमाग हमारे पास नहीं। हम जो काम करेंगे वो अपनी शक्ति से और अपनी बुद्धि से करेंगे। दूसरी बात इसके साथ साथ कहना चाहता हूं कि दरिद्र नारायण शब्द में गौरव नारायण का है, दरिद्रता का नहीं। मेहरबानी कीजिए, दरिद्रता को आप गुण न मानिए। दरिद्रता दोष है, दरिद्रता बीमारी है, दरिद्रता अपराध है। और उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि अमीरी अपराध है। अमीरी और जमाखोरी, चोर बाजारी, ये जितने बड़े अपराध हैं उतना ही अपराध गरीबी भी है। इसका एहसास, इसका बोझ इस देश के गरीब आदमी को होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। नारायण के उपासक हम हैं, दरिद्रता के नहीं। दरिद्रता संयम नहीं, दरिद्रता अपरिग्रह नहीं है। ये अगर हमारे ध्यान में नहीं आएगा तो मित्रों ये जो गरीब आदमी है ये हमेशा कल्याणकारी संस्थाओं के भरोसे जिएगा, ये अपने भरोसे कभी नहीं जिएगा। हमें कल्याणकारी कार्य करना है इसलिए नहीं कि गरीब आदमी हमारे भरोसे जिए, हम उसके उपकार करता और वो हमारे भरोसे जीने वाला। तो ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा कल्याणकारी संस्थाओं का ये अमीरी से भी भयानक होगा, क्योंकि इसे पुण्य कार्य समझा जाएगा। यहां परिवर्तन का सवाल आता है जिसका संकेत कांति भाई ने किया। उस गरीब आदमी का दिल बदलना चाहिए। वो आज हमारी संस्थाओं में नहीं हो रहा है क्योंकि हम उस उद्देश्य से ये कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारी संस्थाओं में भी ट्रेड यूनियनिज्म आएगा लेकिन गरीब और अमीर, मालिक और मजदूर का रिश्ता न रहे यह नहीं होने वाला। हमारी संस्थाओं में भी कार्यकर्ताओं का जो वर्ग रहेगा वो ब्यूरोक्रेसी के जैसा ही वर्ग बन जाएगा और आज बन रहा है।
ये एक नए किस्म का एलिटिज्म आएगा। आदिवासियों में जो लोग काम पाएंगे और शिक्षण पाएंगे ये आप में मिल जाएंगे, उन आदिवासियों से अलग हो जाएंगे। अछूतों में जो शिक्षण पाएंगे जो काम पाएंगे वो दूसरे अछूतों से अलग हो जाएंगे। ये सोशलिज्म में भी हुआ, ये कम्युनिज्म में भी हुआ और मुझे भय है कि ये सर्वोदय में भी हो रहा है। मैं सर्वोदय से मतलब सभी संस्थाएं जो गांधी के नाम पर चल रही हैं, उन सारी संस्थाओं को मैं सर्वोदय में शामिल करता हूं। यह हम लोगों में भी हो रहा है, इसलिए हमको अपने मन में साफ रहना चाहिए कि हमारी उपासना नारायण की है, नररूपी नारायण की है, लेकिन दरिद्रता की नहीं, क्योंकि हम उसको मिटाना चाहते हैं। दरिद्री मनुष्य अमीर से अधिक सद्गुणी होता है यह मैंने नहीं देखा। आखिर गरीब के ही तो अमीर बनते हैं, उसको मौका नहीं मिलता, इतना ही है। बुराई का मौका कम होता है गरीबी में, गरीबी में अपनी अच्छाई नहीं होती है। दूसरी चीज और भी आप लोगों से कह देना चाहता हूं और वो यह है कि गांव का आदमी शहर के आदमी से ज्यादा सद्गुणी होता है, यह भी भ्रम है। वो शहर में जाते ही क्या क्या करता है आप जानते हैं। गांव के मनुष्य को शहर के जीवन का आकर्षण, उसकी यह शिकायत है कि शहर को जो सुख सुविधाएं प्राप्त हैं वो गांव में प्राप्त नहीं है। ये शहर का आकर्षण केवल आपके उद्योग देने से कम होने वाला नहीं। उद्योग देना आवश्यक है, उसकी भूख का जवाब देना आवश्यक है। ये काम आप लोग कर रहे हैं, बधाई है, धन्यवाद है, नमस्कार। लेकिन इसके आगे इस बात की आवश्यकता है, क्या इन गांवों में भारत रहता है जो गांव आज है, जिनमें इतनी गंदगी है, जिनमें इतना भयानक जातिवाद है, जिनमें इतना जीर्ण मतवाद है, क्या इन गांवों को हम रखना चाहते हैं? क्या ये गांव गांधी के गांव होंगे? इन गांव में कौन सी अच्छी ऐसी अच्छाई है? संविधान पर बनाया अंबेडकर ने, गांधी ने हम लोगों को संदेश भेजा कि तुम लोगों ने तो इस संविधान में गांव के का ख्याल नहीं रखा। संयोजन में अर्थ रचना में अंबेडकर से हम लोगों ने कहा, उन्होंने जवाब दिया, गांव में मेरी अछूतों का स्थान क्या है, इस गांव की मेरे दुआ दिल में क्या कदर हो सकती है, मैं इस गांव को क्यों बचाऊं। मित्रों, कारीगरी की बात कही गई, कुम्हार का रोजगार गया, चम्हार का रोजगार गया, नाई का रोजगार गया। आप अपने से पूछिए, मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे, क्या फिर से गांव में चम्हार कुम्हार नाई रहेंगे? क्या वही पुराना गांव रहेगा? नाई का बेटा नाई होगा, भंगी का बेटा भंगी होगा, चमार का चमार होगा, कुमार का कुमार होगा। ये फंक्शनलिज्म हो जाएगा एंड फंक्शनलिज्म इज कलर ब्लाइंड टू ऑल ह्यूमन वैल्यू। व्यवसायवाद में से कोई किसी प्रकार का मानवीय मूल्य पैदा नहीं होता, इसीलिए तो हमारी हालत हुई। लिखा था गांधी ने, वर्ण एटले धन दो, वर्ण एटले धन दो रहेगा तो यह देश रसातल को चला जाएगा। इसको समझने की आवश्यकता है। चरखा आप देते हैं तो जाति नहीं देखते हैं, ब्राह्मण से भंगी तक सबको देते हैं। तो ध्वनि भी इसी रूप में जाएगी। जूता बाटा के कारखाने में नहीं बनाएगा बनेगा, लेकिन चमार क्यों बनाएगा? वो चमार बाबू क्यों नहीं बनेगा अगर वो बनना चाहता है? तो वो आपसे कहेगा कि बाबूगिरी का मजा आपने खूब चख लिया और अब मुझे चमार रखना चाहते हैं, मेरे बेटे को भी चमार रखना चाहते हैं। समाज परिवर्तन कहां आता है मैं आप लोगों से कह रहा हूं, और ये अस्मिताएं उभर रही हैं मित्रों। अच्छू उन्हीं पाठशालाओं में जाएगा जिन पाठशालाओं में आप गए और बाबू गए, वो आपकी नई तालीम में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी आकांक्षा बाबू बनने की है। इसलिए उसके स्टेटस को बदलना होगा, उसका रुतबा समाज में, उसका जो दर्जा है, जो प्रतिष्ठा है, उसको बदलना होगा। वो प्रतिष्ठा अभी बदली नहीं है, बनाने वाले की इज्जत समाज में नहीं है, बरतने वाले की है। 100 रुपए का जूता खरीदने वाले की, बरतने वाले की इज्जत है, 100 रुपए का जूता बनाने वाले की इज्जत नहीं। द प्रोड्यूसर हैज नो स्टेट्स। कुछ मूल्य परिवर्तन का भी होगा कि नहीं हमारे रचनात्मक कार्य में? कल्याणकारी कार्य में से ये होने हो, या अगर नहीं होगा तो एमिनिज्म आएगा और झगड़े पैदा होंगे। जिसका पेट भरेगा, पेट भरने के बाद वो इज्जत की बात करेगा। आज भूखा है तब तक वो आपका एहसान मानता है, जिस दिन पेट भरने लगेगा उस दिन वो मुंहजोरी करने लगेगा, धृष्टता करने लगेगा, और ये उसके विकास का चिन्ह होगा, ये उसके विकास का लक्षण होगा। आंबेडकर कितना उद्दाम उद्धत मालूम होता था, क्यों मालूम होता था? प्रतिक्रिया थी, दबा हुआ था, उसमें से ऊपर आया। तो इस प्रतिक्रिया का भी सामना हमको करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये दोनों काम साथ साथ चलने चाहिए। कल्याणकारी काम आवश्यक है, देखिए भी नहीं भूलना चाहिए कि इसमें से समाज परिवर्तन अवश्यम भावी है, होने ही वाला है। उस समाज परिवर्तन के सहायक हम हैं, उसको क्रांति की दिशा में बोले, सिविल वॉर की दिशा में नहीं। आज जो घेराव हो रहे हैं हमारी संस्थाओं में, हड़ताल हो रहे हैं, घेराव हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहे हैं? एमर्जिंग आइडेंटिटी, ये असलियत उभर रही है। दबी हुई अस्मिताएं समाज की उभर रही हैं। जो जो उनका योगक्षेम सिद्ध होता चला जाएगा, दूसरी आकांक्षाएं पैदा होंगी और वो शुभ चिन्ह है मित्र। ये आदिवासियों में आप काम करते हैं किस लिए करते हैं? हमारे बहुत से साथी कहते हैं कि आदिवासियों का समाज आदर्श समाज है, तो फिर वहां काम करने जाते किस लिए? तुम लोग बुद्धि लगाओ, तुम उनके नाच सीखो, ये क्यों नहीं कर रहे हो? वो आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज होता तो जंगलों में नहीं भगाया जाता, उसे इस देश में रहने के लिए जगह नहीं रही। उसमें आकांक्षाएं पैदा होनी चाहिए और भौतिक आकांक्षा, फिजिकल वेलबींग, मटीरियल वेलबींग, ये आकांक्षाएं उनके चित्त में पैदा होनी चाहिए। वो आकांक्षाएं भी आप जो जो काम देंगे और उनको भोजन देंगे, क्यों क्यों उनमें पैदा होंगी। मुझे याद है चमारों की एक कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, तो एक कार्यकर्ता ने, चमार ने मुझसे कहा कि अब हमारी भी बहुत उन्नति होती है। हमने कहा क्या क्या उन्नति हो रही है? अब हमारी जीवनारों में लड्डू और जलेबी आने लगी है, जो हमने कभी देखी ही नहीं थी। और मैं समझा कि ये उन्नति है हमारी, शायद उसमें उन्नति नहीं होगी लेकिन उनकी उन्नति है। तो ये जो मटीरियल वेलबींग है, भौतिक जीवन में संपन्नता उनमें आनी चाहिए, और साथ साथ ऑस्टेरिटी, उसके साथ साथ भोग लालसा न बढ़े, इसके लिए शिक्षण है। युवतराम काका ने आश्रमशालाएं भी खोली हैं। हमारे यहां मधुकर चौधरी, वो हैं शिक्षण मंत्री थे, वो अपने गांव में मुझे ले गए। वहां एक आदिवासियों की शाला थी, उस स्कूल में मैं गया और उनके छात्रालय में गया, बोर्डिंग हाउस में। उन लड़कों से पूछा कि तुम छुट्टियों की राह देखते होगे कि कब घर जाने को मिलता है, तो उन लड़कों ने मुझसे कहा कि हम छुट्टियों के राह नहीं देखते, छुट्टियों से घबराते हैं। क्यों? हम घर जाना नहीं चाहते, उन घरों में हम रह नहीं सकते हैं। यहां जो भोजन मिलता है वो उन घरों में मिलता नहीं। ये अनुभव मुझे उस आदिवासी शाला में हुआ, थोड़ी देर जहां मैं रुका। मित्रों, आप इसको न भूलिए, गरीब देश में आकांक्षा हमेशा वैभव की रही, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए हमारे सारे स्वर्ग अप्सराओं से और अमृत से ही भरे हुए, और हमारे सारे पुराणों में दही दूध के ही समुद्र हैं, हमारे भगवान दूध के ही समुद्र में रहते हैं। दुर्भिक्ष है, जिस देश में दुर्भिक्ष है उस देश में आकांक्षा भौतिक भौतिक वैभव की रहती है। स्वर्ग को रहने लायक चीज है क्या? आप ही सोचिए कि जहां बगैर मेहनत के अमृत मिल जाता है और बगैर शादी के अप्सराएं मिल जाती हैं, वो रहने की इसका स्थान है क्या? लेकिन उसी का चित्र हमने देखा। आकांक्षा वैभव की, इसको नहीं भूलना चाहिए मित्रों। इसको भूलेंगे तो हमारा कदम आगे नहीं बढ़ेगा। मैं बहुत नहीं बढ़ाऊंगा, बोलने की आदत है, एक दफा बोलने लगता हूं तो बोलते ही चला जाता हूं। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, मनुष्य के कई संस्करण निकले, जैसे आजकल किताबों के निकलते हैं कि अच्छा पुट्ठा और पेपर बैग कागज का पुट्ठा। भगवद्गीता देखे तो कितने निकले, इतनी बड़ी भगवद्गीता भी है और माचिस के बराबर भी भगवद्गीता है, छोटी सी ताबी थी भगवद्गीता। ऐसे भगवद्गीता के कई संस्करण निकले, गुजराती में संस्करण ही कहते हैं, क्या कहते हैं ठीक है, आवृत्ति, कई आवृत्तियां निकली। ऐसे मनुष्य की कई आवृत्तियां निकली। आज की जो आवृत्ति है इसका नाम है मार्केट ओरिएंटेशन, बाजार आवृत्ति। आज मनुष्य के जीवन में मुख्य संस्था बाजार है, हमारे जीवन का नियामक बाजार है, पाठशाला भी नहीं और मंदिर भी नहीं। इसलिए इन खादी वालों को बाजार की बात सोचनी है, कंज्यूमर सोसाइटी। मैंने आपसे कहा ना कि बरतने वाले का आज दुनिया बरतने वाले की है, बनाने वाले की नहीं, कंज्यूमर की है, उपभोक्ता की है। और उपभोक्ता की दुनिया का नाम है बाजार। सारा का सारा ये विश्व, आज का जगत एक बड़ा बाजार है और मीना बाजार है। मीना बाजार से मतलब जहां मनुष्य भी दिखता है और मनुष्य